राम राम हरे हरे
राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का आज शुक्रवार की शाम को वरुण और विशाल के निवास स्थान के ऊपर भक्ति वृक्ष के भक्तों का स्वागत है। भक्ति को वृक्ष इसलिए कहा है, भक्ति के वृक्ष इसलिए कहा है कि उसको बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए इसका मतलब उसमें विस्तार होना चाहिए और दूसरे को छाए और फल दे, छाया भी दे और फल भी दे। भाई वृक्ष थोड़ा बड़ा होगा तब किसी को छाया देगा और फल भी देगा। तो भक्त जो भक्ति वृक्ष में भाग लेते हैं वो जब नए होते हैं तब तो माली बन के उसका थोड़ा सा जलपान से सिंचन करना पड़ता है, ये शास्त्र के द्वारा उनका पोषण किया जाता है। श्रवण कीर्तन जले सिंचन करे, श्रवण का मतलब हरि कथा और कीर्तन का मतलब भगवान का, श्रवण का मतलब भगवान की कथा सुनना और कीर्तन का मतलब भगवान का नाम जपना, कीर्तन करना आदि। ये जल है जिससे भक्ति की लता को सिंचन होता है, वृक्ष होता है, फिर ये भक्ति का वृक्ष बड़ा बनता है। तो आप सबका असल में उद्देश्य जीवन का आपका अब ये है कि एक एक जो भक्ति वृक्ष का मेंबर है वो अपने से अपने जैसे और ज्यादा ऐसे वृक्ष बनाए। वृक्ष अपने से अपने जैसे कई और वृक्ष बनाता है, इसलिए इसको भक्ति वृक्ष कहते हैं कि ये बढ़े और दूसरों को छाया दे, दूसरों को फल दे और दूसरे एक दूसरे से बढ़ते जाएं आगे, तो इसके शाखाएं बढ़ती जाएं। वैसे असल में क्या, आजकल जंगल खत्म होते जा रहे हैं दुनिया में, आदमियों ने लकड़ियां काट दी हैं, इसलिए अब हमको मानवों का वृक्ष बनाना पड़ा है। यह जंगल ही समाप्त हो गए सब जगह, तो अब इसलिए ये भक्ति के वृक्षों का हमारे को बड़ा सुहावना एक जंगल बनाना है, जिस जंगल के अंदर राधा कृष्ण की बांसुरी सुनाई दे और संसार के सारे दुख समाप्त हो जाएं, ऐसा सुंदर वृंदावन जैसा वन भक्ति के वृक्षों का बनाना है। तो ये इस विषय को समझने के लिए आज हम भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ेंगे। कोई भक्त हिंदी की भगवद गीता लेके बैठेगा तो अच्छा है। श्लोक आप आवृत्ति कीजिए। मनुष्याणां सहस्रेशो कश्चित् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां, कश्चिन् माम वेति तत्त्वतः। तो ये श्लोक सातवें अध्याय भगवद गीता का है, जिस अध्याय का नाम है परम का ज्ञान, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, परम सत्य का ज्ञान, परम सत्य ज्ञान विज्ञान योग, इसका दूसरा नाम है ज्ञान विज्ञान योग। तो इसमें परम सत्य का ज्ञान क्यों लिखा है, विज्ञान का मतलब परम सत्य उसको जानना। तो कौन जान सकता है परम सत्य को, मनुष्याणाम सहस्रेशु, हजारों मनुष्यों में कोई एक, कश्चित यतति सिद्धये, वो कम से कम ये सोचता है कि मुझे सिद्धि को प्राप्त करना है। सिद्धि किसको कहते हैं, सिद्धि का क्या अर्थ है अंग्रेजी में, परफेक्शन, परफेक्शन किस बात में, ज्ञान में सिद्धि प्राप्त करता है, जानकारी में सिद्धि प्राप्त करता है। सिद्धि चावल पकाते हैं आप लोग घर में, देखा है? अभी तो कुकर में पकता है, पुराने जमाने में चावल को एक दाना निकाल के बाहर ऐसे देखते थे, कहते ये सिद्ध हो गया। चावल सिद्ध हो गया मतलब गल गया, पक गया, उसके अंदर जो पौष्टिक पदार्थ थे वो सारे अब किसी की सेवा में आने के योग्य हो गए। किसकी सेवा में? जिसके लिए पका है। तो हम जो जीव इस दुनिया में आए हैं, किसने पैदा किए हैं? किसने पैदा किए इस दुनिया में जीवों को? सृष्टि कौन करता है? भगवान करता है। अब हमको सिद्ध होना है और भगवान की वापस सेवा में लगना है। सिद्धि का मतलब वापस भगवान की सेवा में लगने का प्रयास, ये सिद्धि की परिभाषा ये होनी चाहिए। जैसे चावल सिद्ध होता है, इसका मतलब पक गया। इसका सिद्धि का अर्थ है यहां पकना, विजडम की तरफ आदमी आगे बढ़ना। और विजडम का अर्थ क्या हो गया? वाइज मैन किसको बोलते हैं? बुद्धिमान। मनुष्याणाम अपि सहस्रेषु, हजारों में से कोई एक मनुष्य, यतति का अर्थ क्या है? यतन करता है। यतति यतन करना, सावधान रहना। कि मैं एक अर्थ इसका ऐसे लेना चाहिए कि वो ये सोचता है कि ये मनुष्य इस दुनिया में जो आए हैं, इनका जन्म हुआ है, इनको मरना पड़ रहा है। लोग दुनिया में दुख भी देख रहे हैं, फिर भी कोई ये तो विचार भी नहीं कर रहा है कि जाना कहां है, कहां जाना है। इसके ऊपर कोई चर्चा कर ही नहीं रहा है, विचार ही नहीं कर रहा है। पागलों की तरह इस दुनिया में खा पी के ऐसे घूम रहे हैं और सबको जाते हुए देख रहे हैं, और इनको विचार भी नहीं आ रहा है कि एक दिन हमको जाना पड़ेगा और कहां जाएंगे। तो ऐसे हजारों में से कोई एक ऐसा विचार करने लगता है कि मैं क्यों यहां आया हूं, कहां मेरे को जाना है, मुझे क्या करना चाहिए, असल में मेरा हित किस में है। सिद्धि का मतलब अपने लक्ष्य, गंतव्य लक्ष्य को प्राप्त करना, जो जहां हमें पहुंचना है उस लक्ष्य को प्राप्त करना, ये सिद्धि है। जैसे आप कहते हैं बिजनेस में हमारी सिद्धि ये है कि हमने इस हाइट तक पहुंचना है, अथवा यहां तक हमको काम बढ़ाना है, ये बिजनेस की सिद्धि हो गई। तो हर एक काम की आप कोई तो लिमिट रखते हैं ना। तो मानव जन्म की सिद्धि क्या है, उसको बहुत कम लोग जानते हैं। इस श्लोक से ऐसे लगता है अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, भगवान ने कैसे कहा होगा, चारों ओर वो कितने थे? सिक्स मिलियन थे कि 6 बिलियन, कितने लोग थे महाभारत के युद्ध में? 64 करोड़। 11 अक्षौणी एक तरफ थी और 7 अक्षौणी दूसरी, तो 11 और 7 18 अक्षौणी, और 1 अक्षौणी में कितना होता है ये भी लिखा हुआ है, देखेंगे तो। वो उनकी तरफ ऐसे कहे कि भगवान ने कहा है मनुष्याणाम सहस्रेषु, इनमें से कोई मुश्किल से एक होता है जो कम से कम क्यों यहां आए हैं, इनको पता तो होना चाहिए क्यों आए हैं। यानी जीवन के, अब दुर्योधन काय के लिए सब आप आदमी को इकट्ठा करके यहां मरवाने के लिए आया, राज के लिए, राज के ही लिए लाया है ना। तो इसका मतलब सिद्धि इसकी राज हो गई ना। और अर्जुन की ओर देखा, आप तो राज 3 लोगों का भी पसंद नहीं करते हैं, युद्ध करना भी नहीं चाहते हैं, कम से कम आप सीधे रास्ते के ऊपर तो आप सिद्धि राज को तो नहीं मानते हैं ना। भगवद गीता के पहले अध्याय में जब अर्जुन कहता है मुझे 3 लोगों का राज नहीं चाहिए, इसका मतलब अर्जुन कहता है सिद्धि संसार में के राज प्राप्त करना या स्वर्ग प्राप्त करना सिद्धि नहीं है। तो ये लोग तो सिद्धि को जानते भी नहीं है, यहां आए हैं। तो अर्जुन देखो कि एक सिद्धि को नहीं जानते हैं, आए तो राज के लिए हैं, तो और किस लालच से आए। और अर्जुन राज के लिए युद्ध करने को तैयार नहीं था, भगवान ने कहा मेरे लिए युद्ध करो, तो फिर ऐसे जो हजारों में से कोई एक मुश्किल से सिद्धि को जानने, अपने आप के अपने जीवन के लक्ष्य को जानने का अभिलाषी होता है, इच्छुक होता है, ऐसे हजारों और जो सिद्धि के रास्ते के ऊपर चलने लगते हैं, कश्चन माम वेति तत्वतः, उनमें से अर्जुन कोई एक मुश्किल से मुझे तत्वतः सार रूप जो मेरा असली रूप है उसमें कोई एक मुश्किल से मुझे जानता है। भगवान का ये कहने का अर्थ है कि कृष्ण को जानने वालों की संख्या संसार में थोड़ी कम है, अल्प है, ज्यादा नहीं। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस श्लोक से अलग प्रकार के मानव संसार में इसका पता लगता है। वन में भी सफिशियंटली इंटरेस्टेड इन ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन ट्राई टू नो व्हाट इज सेल्फ, व्हाट इज बॉडी एंड व्हाट इज एब्सोल्यूट ट्रुथ। ये सिद्ध किसको कहते हैं, सिद्धि को प्राप्त कौन करना चाहता है, जो अपने आप को जानना चाहे, परमात्मा को जानना चाहे, हा? शरीर क्या है, परम सत्य क्या है, आत्मा क्या है, इसको कोई जानना चाहे, इसका मतलब वो सिद्धि के रास्ते के ऊपर चल रहा है। पढ़िए ये पहली लाइन पढ़िए,
मनेश्वर के विभिन्न कोटिया है और हजारों मनुष्यों में से शायद बिरला मनुष्य ही जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है।
तो अब आप देखिए कि कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है और परम सत्य क्या है। आप अपने जो सर्किल में जितने लोग हैं, जितनों को आप कम से कम जानते हैं, उसमें से ढूंढो के कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, सफिशियंटली इंटरेस्टेड। सफिशियंट मतलब जो निश्चित रूप से इसको जानने के इच्छुक हैं, कितने हैं। आत्मा क्या है, परम सत्य क्या है, शरीर क्या है, इसको जानने वाले कितने लोग आपके सर्किल में हैं। हजारों लोगों से आपका पाला पड़ता है, देखते हैं रोड गांव में चलते फिर रहे हैं, कितने लोग हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, बहुत कम लोग हैं क्या। नहीं,
हम ही नहीं जानते थे, हम ही आ गए थे इसको।
तो बाकी लोग क्या करते हैं जो नहीं इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो वो किसमें इंटरेस्टेड हैं। प्रभुपाद कहते हैं वो लोग, वो सुनिए, वो लोग किसमें इंटरेस्टेड हैं, सामान्य लोग,
सामान्य मानव आहार निंद्रा भय मृत्यु जैसी पशुवर्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है।
अब ये समझ में आ गया कि बाकी लोग क्या करते हैं। आहार भोजन कहाँ मिलेगा, सोने के लिए जगह चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, एक नारा होता है रोटी कपड़ा मकान।
नहीं, नारा चेंज हो गया।
हाँ,
रोटी कपड़ा मोबाइल।
मोबाइल अच्छी बात है। तो लोग इसी काम में सारे लिप्त हैं, बहुत कम लोग हैं जो आत्मा परम सत्य को जानने का प्रयास करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये शरीर एक दिन छोड़ना पड़ेगा। इस बात को फेस करने वाले बहुत कम लोग इस दुनिया में, ये सत्य है कि झूठ है, सत्य है ना कि नहीं। सारे लोग इस काम में दुनिया के लगे हुए हैं, बहुत कम लोग हैं जो दिव्य ज्ञान में इंटरेस्टेड हैं। ये दिव्य ज्ञान में इंटरेस्टेड क्यों लिखा है, सब कहते हैं हम ज्ञान तो प्राप्त कर ही रहे हैं, स्कूल में सब पढ़ने जा रहे हैं, हमें भारत को 2025 तक 20 तक सारा 100% लिटरेसी पढ़ने वाले ज्ञान वाले बनाने हैं, ये तो हमारा लक्ष्य मानो कहते हैं। तो फिर यहां क्या लिखा है, ये सारे जो एजुकेशन है वो ये चार काम करने के लिए, ये जितनी शिक्षा जिसको सो कॉल्ड ज्ञान कहते हैं, इसलिए आज सुबह भागवत में हमको कहना था, प्रभुपाद ने एक लाइन लिखी है, अगर कोई सफिशियंटली इंटेलिजेंट होगा तो आजकल के बच्चों को स्कूल में भेजता है वो समझेगा कि मैं इनको कहां भेज रहा हूं, स्लॉटर हाउस में, शब्द लिखा है पशु वध घर में भेज रहा हूं। क्या इसका अर्थ है? इनको शिक्षा दी जाएगी आहार निद्रा भय मैं सुने की, वो तो पशु हैं। आत्मा की शिक्षा में इतना उनको सफोकेट किया जाएगा कि उनके मानव जन्म का लक्ष्य ही मर जाएगा। हम मजबूर हैं, जानते हैं, आपके घर में इसके ऊपर बहुत चर्चा हुई थी, है ना योगेश जी, आपके घर में इसके ऊपर चर्चा हुई थी। जितना स्कूल में पढ़ाया जाता है उसका 20% भी हमारी जिंदगी में काम नहीं आता है, 80% बेकार का, न अलजेब्रा कम आई, न ज्योमेट्री कम आई, न ट्रिग्नोमेट्री कम आई, न फिजिक्स काम आई, न केमिस्ट्री काम आई, कोई काम आई कभी जिंदगी में? काम आता है रोटी बनाना, वो कोई नहीं सिखाता। ये बहुत समस्या है कि नहीं है? इतना वेस्ट टाइम जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद ने वर्ड बहुत सोच समझ के लिखा है कि मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम जो है वो स्लॉटर हाउस जैसे हैं, जैसे बकरियां जाते हैं मारी जाती हैं और दूसरे खड़े हुए समझते हैं कि नहीं मेरी कोई बात नहीं, मैं भी जा रहा हूं अंदर। बहुत बड़ी परेशानी की समस्या है। स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंट नॉलेज में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, आध्यात्मिक जिज्ञासा में किसी को शौक है ही नहीं। तो ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि आप थोड़े लोग जो हैं कम, ये हजारों में से कोई एक वाले हैं भगवान की नजरों में, दुनिया की नजरों में। हो सकता है कि आप बेकार हो, आपको किसकी नजर में अच्छा होना है? लेकिन मैं आपको बताऊं हमारा मानसिकता कैसी हो गई, स्त्री को किसकी नजर में अच्छा होना चाहिए, सज धज के घर में बैठना चाहिए पति के लिए ना, सब सज धज के बाजार में घूमने जाती हैं कि नहीं कि दुनिया देखे कि हम अच्छी लगे, ये सच है कि झूठ है? जरा आप ईमानदारी से बोलना कि सच है कि झूठ है? इसका मतलब हम भगवान को अच्छे लगे इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, दुनिया को हम अच्छे लगे ये हमारा लक्ष्य। सच है कि नहीं? ये सोचने का विषय है, ये हमारी मानसिकता का दर्शन है। कभी आपके यहां कभी कहा था कि नहीं कहा था कि घर महंगा है या घर में रहने वाले, रहने वाला रेट घर का ज्यादा है कि रहने वाले का ज्यादा है मार्केट में? आज घर का ज्यादा है ना, रहने वाला आज 25 साल कमाएगा तब घर बनेगा, घर का रेट ज्यादा है रहने वाले का कम है, और इम्पोर्टेंट घर है कि रहने वाला है? जमीन का रेट ज्यादा है कि किसान का तनख्वाह ज्यादा है, और इम्पोर्टेंट किसान है कि जमीन? ये दूसरी हमारी मानसिकता का दर्शन है कि आत्मा की इम्पोर्टेंस के से ज्यादा शरीर को इम्पोर्टेंस दे दिया, घर के रहने वाले से घर को इम्पोर्टेंस, कितना घर को सजाया है लेकिन घर वाला बेचारा भूखा रह के ये सब कुछ किया है, सुबह से शाम तक पागल की तरह भाग भाग के ये सब किया है, और ये घर उसकी तरफ देख के मुस्कुराता भी नहीं है। और लोग आते हैं कहते हैं हाँ बहुत अच्छा आपने घर बनाया, हाँ वाह वाह बस दिल खुश हो गई। ये सच है कि झूठ है? ये मानसिकता, भौतिकवादी मानसिकता ने हमारे को, हमारा सारा सोच उल्टी कर दी कि हम बहुत थोड़े लोग हैं। ये पता है कैसे ये दुनिया कैसी है? वो हनुमान जब लंका में प्रवेश कर रहे थे ना, तो छोटे बन के जा रहे थे, तो लंकनी ने उसको पकड़ लिया, बोला चोर अंदर कहां जाते हो? हनुमान ने देखा कि चोर मैं कि तेरा मालिक, सीता को वो चुरा के आया है कि मैं, तो चोर कौन है हा? चोर कौन आप बताइए, चोर रावण के हनुमान? अब हनुमान सीता को लेने जा रहा है, उसको लंकनी चोर कह रही है। ये दुनिया वैसे लंकनी की तरह है। आप भगवान की भक्ति कर गएंगे, बोलेंगे खैये तो खराब है, बेकार है, किसी काम के नहीं। अरे बेकार तो तुम हो, और लंकनी की तरह बेकार तुम हो, ये समझ में नहीं आएगा उसको। शराब भी नहीं पीते हैं, मांस भी नहीं खाते हैं, इतना आसान तरीका नरक जाने का, ये मूर्ख इसकी तरफ इसके ऊपर चलने को तैयार नहीं है। कितनी मेहनत करते हैं, दो दो घंटे बैठ के, अरे कृष्णा अरे कृष्णा 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 अरे 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 राम अरे राम 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 अरे, क्या मिलेगा? ये लोग लंकनी की तरह ऐसे कहेंगे। अब चोर कौन? हनुमान के राम रावण। अब ये स्थिति है तो लाखों में से कोई मुश्किल से, सहस्रनामा हजारों में से कोई मुश्किल से एक होता है जो आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि रखता है, वो भगवान की नजर में मुख्य होता है। हमको भगवान की नजर में मुख्य होना है, दुनिया की नजर में नहीं। और हमारी सारी चेष्टाएं इस दुनिया में दुनिया को खुश करने के लिए है। सच है कि झूठ है? सत्य है कि नहीं? तो हमको क्या करना चाहिए? हनुमान की तरह लंकनी को थोड़ा सा मुक्का मारना चाहिए, नहीं तो सिद्धि नहीं होगी। फॉल्स प्रोपेगेंडा, ये वेस्टर्न, ये पाश्चात्य संस्कृति ने हमारा ये हाल किया। भौतिकवादी संस्कृति, हमने कल कहीं कहा था, यूज ऑन थ्रो वाली संस्कृति, जिसको कहते हैं डिस्पोजेबल संस्कृति, हर चीज को डिस्पोजल करो, मां बाप को डिस्पोज करो, कहां से बाहर जाओ, ओल्ड एज में होम में डिस्पोज, सब कुछ डिस्पोज करने का फार्मूला। तो दिव्य ज्ञान में इंटरेस्ट रखने वाले भगवान को अच्छे लगते हैं और दुनिया को वो पहले पहले अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए हम अपने अनुभव से आपको बोलते हैं, अगर आप कृष्ण भावना में आए हो तो आपके रिश्तेदार फ्रेंड सर्कल आपको 5-7 साल से लेकर 15 साल तक पागल कहता रहेगा। अगर वो कहते हैं तो आप समझ लो कि आप सीधे रास्ते पे हैं। अगर वो ये नहीं कह रहे हैं तो आप सहस्रेशु सिद्धि वाले में नहीं हैं। ये आपको हम देते हैं कसौटी, जैसे 22 क्रेट है कि 24 क्रेट है कि 20 क्रेट है, टेस्ट करना है। अगर आपका सर्कल और आपके क्लोज रिलेशनशिप आपको कहते हैं कि आप अब बेकार हो गए, हमारे काम के नहीं हो गए, आप समझ लो कि आप हजारों में एक हो जो भगवान के लिए अच्छे हो, दुनिया के लिए नहीं। ऐसे लोग आपको कहते हैं कि नहीं कहते हैं? नहीं कहते हैं तो इसका मतलब अभी आप कच्चे हो। क्यों जी? लेकिन आपको दूसरा एस्पेक्ट बताता हूं, 15 से 20 साल के बाद वो आपको महात्मा मान के आपके चरणों में बैठेंगे, बोले हमने उस वक्त गलती की, आपने सही किया। लेकिन इतना समय इंतजार करना पड़ेगा। हमारा जो अनुभव हम कह रहे थे, आज जो लोग हमको कहते हैं कि डॉक्टरी छोड़ दी, घर का ऐसे कर दिया, वो कर दिया, कहां चला गया, आज वो पांव पड़ती हैं, सेवा करते हैं, लेकिन उसके लिए 30 साल लगे हैं। वही पब्लिक फेवरेबल होगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, और भगवान भी देखता है कि ये कच्चा है कि पक्का है, देख लो। वो श्लोक प्रभुपाद जी ने जब पढ़ा था भागवत का, जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूं, उसको संसार वाले कहते हैं कि ये बेकार है, तभी तो वो मेरी तरफ आएगा। संसार ही अच्छा, संसार ये अच्छा है, ये पॉजिटिव है, डिवोटी के लिए, लेकिन इसके लिए कोई तैयार हो तो वो हिम्मत वाला चाहिए, इसलिए कहें हजारों में कोई एक होता है। क्या विचार है आपका, सही है कि नहीं? घबरा के जाने का नहीं, टिके रहना, नहीं तो फिसल गए तो फिसल गए, टिके रहे तो ठीक है, फिसल गए तो गए, पता नहीं कहां गए, ये समझ लो हिमालय की चोटी पे गिरा फिर पता नहीं कहां गया, वो हड्डी भी नहीं मिलेगी, टिके रहना। अब टिके रहने के लिए क्या करना है, तब कहते सारे सिद्धिक सिद्ध इकट्ठे हो जाओ, संगठन कर लो, तो कम से कम आपका अपना समाज बढ़ेगा। इसलिए प्रभुपाद ने नाम रखा संस्था का सोसाइटी, हम अपना अपना समाज निर्माण करने जा रहे हैं, कृष्ण भावना भक्तों का समाज। पहले इसका नाम प्रभुपाद ने झांसी में जब खोला था तो भक्त समाज रखा था, ये समाज है जिसकी रीति नीति वेद शास्त्र के अनुकूल है, जो समाज जिसमें हम रह रहे हैं ये समाज वेद शास्त्र के प्रतिकूल है, ये सच है कि झूठ है? तो ये समाज जो जिस समाज के हम भाग बनने जा रहे हैं ये समाज शास्त्र अनुमत है, शास्त्र के अनुसार है, मानव सभ्यता का सर्वोत्तम सिद्धि का मार्ग है, और भगवान के द्वारा प्रशंसनीय है, भगवान इसकी प्रशंसा करते हैं, इस ग्लोरीफाइंग, ये स्पेशल समाज है। फिर भी भगवान कहते हैं इनमें से, आगे इसका इस लाइन को आगे पढ़िए, पहले छह अध्याय
गीता के प्रथम छह अध्याय उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा परमात्मा समय ज्ञान योग ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण को केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय है जो कृष्ण भावना भावित है, अन्य योगी।
बस इसको इसका मतलब यह है कि छह अध्याय गीता के जो पढ़ेगा वो हजारों में से कोई एक होगा, जो छह अध्याय गीता के पहले समझेगा वो हो गया सिद्धि के रास्ते के ऊपर चलने वाला, सातवें से आगे जो पढ़ना शुरू करेगा वो फिर सिद्धों में से एक होगा जो कृष्ण को समझेगा। तो पहले छह अध्याय जो अभी लिखा है जिसके अंदर कर्म ज्ञान ध्यान आदि है, ये आत्मा को शरीर को और परमात्मा को समझने के लिए है, लेकिन कृष्ण के समझने की शुरुआत सातवें अध्याय से आगे होती है, इसका अर्थ ये। तो आप में से जो पुराने हैं उनको छोड़ के छह अध्याय भगवद गीता के पहले पढ़े हैं, अभी नहीं पढ़े हैं ना, इसका मतलब आपका अब टारगेट आने वाले छह महीने में छह अध्याय गीता का अध्ययन करना होना चाहिए, तो आप हजारों में से एक वाली लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है? तो ये अध्ययन करेंगे समझेंगे इसको तो आप हजारों में से एक है जो सिद्धि के रास्ते को समझने का अधिकारी है। ये भगवान के यहां कहने का तात्पर्य ये है। तो छह अध्याय पढ़ने के लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको रोज का कम से कम एक श्लोक पढ़ने का नियम बनाना चाहिए। एक श्लोक पढ़ने के लिए आपको 15-20 मिनट की आवश्यकता है। 700 स्लॉट दो साल में पूरे होंगे और 6 अध्याय आपके इस हिसाब से 8 महीने में 9 महीने में पूरे हो जाएंगे। तो क्या आपका विचार है कि एक श्लोक रोज पढ़ेंगे? ये आपकी इच्छा है, कमिटमेंट है? आप इस हजारों में से एक की लिस्ट में आना चाहते हैं? हाँ जी, कमिटमेंट आपकी है कि एक श्लोक रोज पढ़ेंगे? उस श्लोक के लिए एक श्लोक भगवद गीता यथा रूप में से अनुवाद और भावार्थ के साथ पढ़ने में आपको ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट लगेंगे, समझने में 10 से 15 साल लगेंगे। बात ईमानदार से सच्ची बोल रहा हूं, 25 साल से हमको नहीं समझ में आ रहा है। कहने का अर्थ है कि उसका जो भगवान का जो भाव है उसको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन पढ़ने में इतना टाइम लगेगा। आप अब पढ़ना ही शुरू करो, फिर करना पड़ेगा। तो पढ़ने के बाद जो करना है, अरे पढ़ने के बाद करना पड़ेगा। क्या
पूछ लेते हैं?
हाँ, आप पढ़ना शुरू करो। असल में आप इसको ऐसे समझ लो, कोई नया आदमी आपको मिलता है, उससे दोस्ती करके उसको समझने में आपको इतना टाइम लगता है? हाँ, आपके बिजनेस में इतने लोगों से आप मिल रहे हो, देख तो रोज रहे हो, मिल रोज रहे हो, लेकिन समझते कितने लोगों को? बहुत कम लोगों को समझते हो कि नहीं समझते? ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण हमारा फ्रेंड है, उसको समझने के लिए हमारे को उससे इंटीमेसी करनी पड़ेगी, तब समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और ये श्लोक एक एक भगवान बोल रहे हैं, इसका मतलब भगवान अपने आप को हमको समझाने के लिए कुछ संकेत दे रहे हैं, लेकिन हम उसके लिए सीरियस हैं तो समझ पाएंगे, नहीं है तो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पहले तो गीता को आदर देना सीखो, नीचे रखना नहीं है भगवान का पुस्तक, कपड़े में लपेट के अपने साथ रखो, जैसे मोबाइल का कवर होता है वो, तो गीता का कवर बनाओ, और कवर गुम हो जाए जैसे प्रकाश परेशान होता है, ऐसे परेशान हुआ करो। अभी गीता का कवर ही नहीं बनाया है, इसका मतलब गीता समझने में हमारी रुचि कम है। हमने इस गीता को, ये दूसरी प्रति मेरे पास है, 780 से समझ लो तो गत कितने साल हो गए? 32 साल। ये दूसरा मेरा बुक है, मैंने एक बुक थोड़ा बीच में थोड़ी चेंज आ गई थी, नया छपा बीबीटी ने, तो उस पुरानी ऐसी कॉपी को मैं चेंज करके ये दूसरी रखी है। ये मैं कब चेंज किया है लिखा नहीं है, मैंने डेट नहीं लिखा है, लेकिन मैंने इसके ऊपर कुछ लाइनें लिखी है जब ये मैंने लिया था तब। दिस भगवद गीता इज वर्शिप्ड सर्व्ड एंड स्वाध्याय यज्ञ बाय, मैं अपना लिखा है कि मैंने ये गीता मेरे द्वारा पूजित है, मैं इसका सेवक हूं क्योंकि ये साक्षात भगवान है, और मैं इसको स्वयं समझने का प्रयास करने का अभ्यास कर रहा हूं। मैं उस दिन गीता के ऊपर ये लिखा है, ये उस दिन से मेरा लिखा हुआ है। क्या डेट नहीं लगाया, क्यों? जिस दिन आया उस दिन लिखा है, तो जब वो बदला मैंने तब ये लिया। मैं समझता हूँ ये होगा, ये वृंदावन में मैंने यूज किया, मतलब शुरू किया है, और वृंदावन में मैं 95 से रह रहा हूँ, 95 से, मैं ये 5-6 के समय से, कितने साल इसको हो गए होंगे? 10-11 साल, इससे पहले दूसरी 17 इसको हो गए, तो पहली वाली 11-12 साल हो रही। तो मोरल लेस इसको मुझे ऐसे लगता है, इसका प्रमाण ये है कि ये इतने पन्ने मैंने उथला है, इसका रंग बदल गया है नीचे, जहां मेरा इसको हाथ लगता है, देखो पता लगता है ना कि यूज की है। ऐसे अपना दिमाग भी यूज करो, कुछ घिसा हुआ लगना चाहिए। जैसे लाए ऐसे वापस मत ले जाना, नहीं तो प्राय गीताएं तो ऐसे अलमारी में रखी होती है, उसका तो पन्ने के ऊपर काला निशान भी नहीं होता है। जितना ये काला हो रहा है, इतना मैल अंदर से साफ होने लगता है, आप समझ लो कि कहीं से निकला है तब यहां आया है। इसका मतलब भगवान आपका सारा मैल अपने ऊपर ले लेंगे, अगर आप इसका अध्ययन करोगे, इसका अर्थ है मेरा सारा ये मेरे हाथों का मेरे है, तो भगवान ने अपने ऊपर ले लिया कि नहीं लिया, मतलब मेरे को साफ करने के लिए ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है किताब। धुनोति समलम कृष्ण, कृष्ण सारा मैल धोता है कि नहीं धोता, ये सत्य है कि नहीं है। तो एक श्लोक रोज पढ़ने का आप अभ्यास करो कमिटमेंट के साथ। मैं आपका उत्साह बढ़ाने के लिए कह रहा हूं, कई 20 साल पहले मैं 6 अध्याय पढ़ता था रोज, फिर कुछ साल मैंने 9 अध्याय रोज पढ़ना शुरू किया कि 2 दिन में पूरी गीता पढ़ता था। अब कुछ समय से 18 अध्याय मेरे को रोज पढ़ने, और मैं यहां से जाऊंगा उसके बाद पढ़ूंगा, मैं अभी सिर्फ 3-4 ही पढ़े, मेरे को अभी सारे पढ़ने, ये रोज का कमिटमेंट है। श्लोक का अर्थ नहीं आएगा तो मेरा अभ्यास ये होना चाहिए कि जब मैं श्लोक पढ़ता हूं तो उसका अर्थ मेरे दिमाग में आना चाहिए, नहीं आएगा तो उसको देखूंगा कहीं ना आया आता है। तो अभ्यास ये कहने का तात्पर्य कि 1.5-2 घंटे मेरे लगते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे समझता हूं कि भोजन की थाली आपके पास आए, उसमें दाल है, चावल है, रबड़ी है, चपाटी है, गुलाब जामुन है, आप सिर्फ दाल पी के और दिन चला लोगे क्या? पूरा सब खाना चाहिए ना। तो अर्जुन ने को तो भगवान ने पहले से आखिरी श्लोक तक तो एक ही सिटिंग में बताया था, 3-4-5 दिन तो नहीं लगाए थे और न ही कोई साल लगाए थे, क्या बात है, सच है कि झूठ है? तो कम से कम नहीं समझते हुए भी रोज जितना उन्होंने कहा सुना है उतना तो करते रहना चाहिए ना। मैं ये सिर्फ आपका उत्साह बढ़ाने के लिए कह रहा हूं कि ये भी संभव है। नए भक्तों के लिए तो आज कहते हैं कि एक श्लोक रोज पढ़ा करो, और जो पुराने उनको 12वां अध्याय गीता का रोज पढ़ने का नियम बना लो। भक्ति योग है, भगवान समझेगा कि ये मेरी भक्ति करना चाहता है तो आस्ते आस्ते हृदय में कुछ भक्ति को उतारना शुरू करेगा। तो जो पुराने हैं, पुराने का मतलब 2 साल से पुराने जो है, वो 12वां अध्याय रोज पढ़े, और 12वां अध्याय में 20 श्लोक है, और 20 श्लोक पढ़ने में आपको 10 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। और हमने जिनको पहले कहा और हमने स्वयं भी पढ़ना शुरू किया, उसे जीवन में बहुत अद्भुत आध्यात्मिक परिवर्तन आएगा। गांधी के आश्रम में 12वें अध्याय का पाठ रोज होता था, साबरमती में भक्ति योग का पाठ होता था वहां। तो ये कोई नई प्रक्रिया हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि आपसे हो सके तो कम से कम अभ्यास करके देखो। आज भी साधु समाज में 15वें अध्याय का पाठ भोजन से पहले रोज होता है, जितने साधु है ना भोजन करने से पहले 15 अध्याय का पाठ करते हैं, वो भी 5-7 मिनट लगते हैं, पुरुषोत्तम योग, भक्ति योग। उसका पाठ रोज करें, बाकी जितना अपना स्वाध्याय बढ़ाना चाहे उतना बढ़ाए। तो पहले 6 अध्याय आपका अब टारगेट है आने वाले 2012 का, तो आप हजारों में एक हो जाओगे, ठीक है? क्यों भाई साधु, पढ़ने का प्रयास करो। बाबा हम आचार चाहते हैं, विचार नहीं चाहते हैं। आप पढ़ोगे तब आचार आएंगे, विचार तो सुन सुन के पूरे हो गए, अब आचार चाहिए। आचार का मतलब आचरण चाहिए, अब इसको शुरू करो। और अगर हमारे इस मार्ग से आप अपना आचार का मतलब आचरण अगर आध्यात्मिक तरफ नहीं ले जाओगे तो ये दुनिया आपका आचार बना देगी। ये दुनिया आपका आचार बना देगी, आचार समझ रहे हो कि नहीं, पिकल बना देगी। अब आचरण सुधारना है कि आचार बनना है, ये आपकी मर्जी। हम आचार की तरफ ले जा रहे हैं, दुनिया आचार दूसरा आचार बनाएगी, आपको जो चाहे वो करो। क्यों बच्चे, गीता पढ़नी चाहिए कि नहीं? मैं आपको कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, आपको जब आप 5-7 साल के थे तब ये याद कराना चाहिए था आपके पेरेंट्स को अथवा आपके समाज के साधुओं को, उन्होंने गलती की है इसलिए आपको अभी ये पढ़ना पड़ रहा है। इससे मैं संकेत आपको ये देना चाह रहा हूं कि आपके बच्चे जो अभी 5-7 साल के हैं उनको ये अध्ययन कराओ। इसको हमारी भाषा में मैंने आपको पहले कहा था, इम्यूनाइजेशन है बच्चे की, जैसे टीका लगाना जरूरी है उसके लिए, ऐसे भगवत गीता की ये शिक्षा बच्चों को चरित्रहीनता के टीके हैं, ताकि आगे चल के वो बिगड़ेंगे नहीं। उनको पढ़ाना ये इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और गांधी जी दुख से रोया करते थे कि मुसलमान बच्चे को कुरान बचपन में हाफिज बना के पढ़ाता है, ईसाई के बच्चे को स्कूल में भी बाइबल पढ़ाया जाता है। दुर्भाग्य से भारतवासी वैदिक संस्कृति के जो है क्या कहते हैं उसको, धरोवर के धनी होते हुए भी अपने बच्चों को गीता की शिक्षा के वंचित रखते हैं। इसका मुझे बहुत बड़ा दुख है। तो ये बच्चे, मैं इसलिए कहता हूं 5 से 7 साल तक आपका कहना मानेंगे, फिर नहीं मानेंगे। उस तबक तक इम्यूनाइजेशन कर लो तो अच्छा है। अगर आपकी आप पहले खुद कर लो, ताकि आपको आपको लगे कि आपका जीवन में परिवर्तन आता है, तो फिर बच्चों को ये देना अति आवश्यक है। इससे ये भी समझ लो कि आप नहीं करोगे तो बच्चों को नहीं दे पाओगे। इसका मतलब फिर उनके लिए दुनिया और मुश्किल हो जाएगी। आपके लिए ये दुनिया मुश्किल हो रही है कि नहीं? आपके जमाने में जो दुनिया थी, अब आपके बच्चों के लिए उससे ज्यादा मुश्किल है कि नहीं? क्या आपका क्या विचार है? मुश्किल हो रही है ना, तो अब आने वाले बच्चों के लिए इससे ज्यादा ही मुश्किल होगी, आसान तो नहीं होगी ना। इसलिए हमारे को इसका अध्ययन करना ये हमारी मजबूरी है, समझ लो, करना पड़ेगा। दवाई समझ के इसको पी लो। भौतिक रोग से रोगी हैं तो ये दवाई है, इसको पी लो और ठीक हो जाओगे तो ये अमृत है। तो अब इसके बाद मेरे ख्याल में इसका इतना ही अब इस स्तर के लिए। इसके बाद जो बातें हैं वो बातें हैं जो 6 अध्याय जानते हैं उनके लिए। अब पढ़ लीजिए इस भावार्थ को।
अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष है, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे है।
इसका अर्थ ये है कि 6 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, अथवा जिन्होंने गीता को ऐसे पढ़ा है ज्ञान के दृष्टिकोण से, वो जान पाएंगे कि भगवान सब जगह प्रकाश के रूप में विद्यमान है, भगवान कण कण में समाया हुआ है, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहता है। ये यहां तक मान लेंगे अथवा जान लेंगे। और ये जानना आसान भी है, और जो ये जानते हैं वो हजारों में से एक हैं जो सिद्धि के मार्ग के ऊपर चल रहे हैं। तो हम में से तो बहुत से लोगों को ये भी पता नहीं है कि ब्रह्म क्या है और परमात्मा क्या है। आप में से जितने बैठे हैं, सवाए 5-7 को छोड़ के मैं आपको पूछता हूं, ब्रह्म किसको कहते हैं, परमात्मा किसको कहते हैं? और साधु जितने आपको समाज में घूमते हुए, भारतवर्ष में घूमते हुए मिल रहे हैं ना, लाल कपड़े वाले, सफेद कपड़े वाले, जितने भी साधु समाज है, उसमें से 90% ब्रह्म को जानते हैं। 10% परमात्मा को जानने वाले, 9% परमात्मा को जानने वाले होंगे कि परमात्मा क्या है। 1% भी नहीं होगा जो परमात्मा और ब्रह्म दोनों का स्रोत अथवा आधार कृष्ण है, इसको जानने वाला 1% भी नहीं होगा। तो ये आपसे उठ के बात गई साधु समाज में। ब्रह्म को जानने वाले बहुत हैं कि भगवान ब्रह्म है, ब्रह्म है, अहम ब्रह्म अस्मि करने वाले बहुत मिल जाएंगे, वो भी कहने वाले, समझने वाले नहीं। योगी लोग जो हिमालय में बैठ के ध्यान करते हैं, वो परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं, ऐसे भी बहुत कम होंगे। लेकिन इससे डरना मत, आप अगर कृष्ण भगवान है ये जान लोगे यहां सरलता से सूरत के अंदर बैठ के अपने घर में भक्तों के संग में, तो ब्रह्म और परमात्मा उसी के अंदर है, इसलिए वो अपने आप समझ में आ गए, उसको समझने का अलग प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इसका अर्थ ये है कि अगर आप हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हो और कृष्ण को परम पुरुष भगवान कम से कम थ्योरिटिकली मान रहे हो, तो आप ब्रह्म और परमात्मा के साक्षात्कार के स्तर से आगे बढ़ चुके हो। इसका अर्थ है कि 90% साधु समाज में जो घर छोड़ के साधु हो गए हैं, उनसे आप गृहस्थी अपने घर में रहते हुए रोज का अगर एक आधा घंटा भगवान के नाम का जप करते हो, भगवान की नजर में आप उनसे ज्यादा प्रिय हो। घर छोड़े हुए साधु, हिमालय में इस ठंडी में तपस्या करते हुए योगी, उनसे आप सूरत की टेक्सटाइल मार्केट में रहते हुए अगर हरे कृष्ण का जप करते हो, तो भगवान श्री कृष्ण की नजर में ज्यादा महान हो। इसका अर्थ ये, इसका अर्थ ये। अब आपका क्या विचार है? जो आप कर रहे हो, हाँ, नहीं भगवान की, क्योंकि भगवान की भाषा में बोल रहा हूं, भगवान ये कह रहे हैं कि जो हजारों में से एक होता है वो तो ब्रह्म मेरे को जानता है, और कोई उनसे थोड़ा सा आगे बढ़ा तो परमात्मा जानता है, लेकिन हरे कृष्ण बोल के कृष्ण को भगवान जानने वाले उनमें से कोई मुश्किल से उन सिद्धों में से हजारों में से कोई एक होता है। कृष्ण भगवत गीता में क्रांतिकार है, भगवत गीता की शिक्षा के शिक्षा कृष्ण की क्रांतिकारी शिक्षा है, जो आपको जहां आप हो, जिस जगह में हो, जो काम कर रहे हो, वहीं बैठे हुए कृष्ण को जान के और उसके भक्त बन सकते हो, ये भगवत गीता में और कहीं शिक्षा नहीं। जहां हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बड़े हो, छोटे हो, दुकानदार हो, कारखानेदार हो, नौकरी करने वाले हो, खेत में, कहीं भी हो, आप सिर्फ चेतना महाप्रभु की कृपा से इस महामंत्र को जप करके मानव जन्म की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो। तो ये कितना आसान सा किया हुआ सिद्धांत है, इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। अब प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये सारे ब्रह्म को मानने वाले शंकराचार्य के, श्रीपाद शंकराचार्य के अनुयायी हैं, लेकिन श्रीपाद शंकराचार्य ने तो गीता के भाष्य में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण परम है, लेकिन ये ब्रह्म को परम मानते हैं, कृष्ण को परम नहीं मानते हैं। ये प्रभुपाद जी का एक दृष्टिकोण है। और फिर आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इन लोगों को कृष्ण को जानना और मानना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और अब शंकराचार्य की बात करके, उनके अनुयायी की बात करके प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी जिसने सृष्टि को रचना की, जिनने भगवान को, अगर किसी ने देखा होगा भगवान को तो किसने देखा होगा, जिसने, जिसको पहले भगवान ने बनाया उसने को देखा होगा ना। तो ब्रह्मा जी ने जब भगवान को देखा तो उसको कहा ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो ब्रह्मा जी ने ये निश्चित करके निर्णय किया कि परमेश्वर, परमेश्वर कृष्ण है, ईश्वर तो बहुत सारे हैं लेकिन परमेश्वर कृष्ण है, जिसका नाम गोविंद है और सारे कारणों का कारण है। ये बात करके प्रभुपाद लिखते हैं, हम जो आपको सिखा रहे हैं कृष्ण की शिक्षा कि मेरी भक्ति करो, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सीधा आदेश दिया है, भाव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, आदेश है, ज्ञानी बनो, ये कहां कहीं नहीं है, ज्ञानी मुझे प्रिय है ये कहा है लेने के, लेकिन भक्त मुझे अति प्रिय है ये कहा है। भक्त बनू ये सीधा उसका आदेश है। तो हम भक्ति कर रहे हैं, उनके आदेश का पालन कर रहे हैं। लेकिन लोग कहते हैं भक्ति तो आसान है, ज्ञान बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद कहते इतनी भक्ति आसान है तो फिर तुम कहूं मुश्किल काम करते क्यों? हाँ, अगर जब वो नाक को ऐसे पकड़ा जा सकता है आराम से, तो फिर आप यहां से घुमा के पकड़ने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? नाक को ही तो पकड़ना है ना। तो भक्ति इतनी आसान नहीं है। प्रभुपाद कहते इतनी भक्ति आसान नहीं है। भक्ति के कुछ नियम है जो पालन करने पड़ेंगे। यहां लिखा है द सो कॉल्ड पाथ ऑफ भक्ति प्रैक्टिस बाय अनऑथोराइज पर्सन विदाउट नॉलेज ऑफ भक्ति मे बी इजी बट वेन इट इज प्रैक्टिस फैक्चुअली अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन द स्पिरिचुअलिटी स्कॉलर्स एंड फिलोसफर्स फॉल अवे फ्रॉम द पाथ। इसका अर्थ क्या है कि लोग कहते भक्ति आसान है लेकिन भक्ति कर नहीं सकते। और सही कोई भक्ति करेगा तो सुबह सवेरे उठेगा, भगवान का नाम जपेगा, शास्त्र पढ़ेगा, अध्ययन करेगा। ये नहीं करता है तो वो भक्ति का नाम का ढोंग कर रहा है लेकिन भक्ति कर नहीं रहा। और रूप गोस्वामी के इस श्लोक को उद्धृत करते हैं कि श्रुति स्मृति पुराण आदि इनका परित्याग करके अपना नया पंथ जगल चला के ये हमारी भक्ति है, ये संसार के अंदर उपद्रव मचाते हैं। क्या करते हैं? उत्पात्यते। अब इस वक्त इतने पंथों का उत्पात है जिन्होंने शास्त्रों का निरादर करके उनका निराकरण कर दिया। हमें चाहिए नहीं शास्त्र, अपने शास्त्र बनाए। ये लोग समाज के अंदर उत्पात मचा रखा है। यहां रूप गोस्वामी के श्लोक से उत्पात मचा रखा है। मेरा पंथ नहीं, भगवान का पंथ अच्छा, ये कोई नहीं कह रहा है। मेरा पंथ, अरे भगवान का पंथ कोई है कि नहीं है? ये भगवान का पंथ है। ये समझ में आने वाले बहुत कम लोग हैं। अब प्रभुपाद जी थोड़ा सा कहते हैं, जो ब्रह्म और परमात्मा को जाने हैं उनके लिए भी भगवान श्री कृष्ण को जानना इतना आसान नहीं। कृष्ण को जानना उनके लिए भी आसान नहीं है। वो लोग कहते हैं कृष्ण ये तो अभी आए थे। हाँ? मक्खन चोरी कर रहे थे, गोपियों के कपड़े चुरा रहे थे, उसको भगवान कैसे माने? ये लोग ऐसे कहेंगे। क्यों कहेंगे? कि वो ब्रह्म और परमात्मा को तो जानते हैं लेकिन कृष्ण को नहीं जानते। ब्रह्मा को जानते हैं, शंकर को जानते हैं लेकिन कृष्ण को नहीं जानते। दोनों को मानते हैं लेकिन कृष्ण को नहीं जानते। रावण ब्रह्मा जी को तो प्रसन्न करके आया था, एक एक सर काट के देके आया था। शंकर को आशीर्वाद ब्रह्मा से ली थी, शंकर की पूजा की थी, उसने भी ब्रह्मा जी का ही पहले आशीर्वाद लिया था। ब्रह्मा जी को एक सर काट के पहले दिया आशीर्वाद, ब्रह्मा ने दी थी, शंकर की पूजा की। शंकर को तो पहले जाके शंकर के पहाड़ को ही हिला दिया था। शंकर ने पांव दबा तब उसका नाम रावण हुआ। अंगूठे से दबाया, पहाड़ के नीचे हाथ आया, रोने लगा, तब नाम उसका रावण पड़ा। पहले दशगिरी का नाम था। पूजा ब्रह्मा जी की करके एक सर, एक साल में एक सर देता था, दसवें साल में आखिरी सर हुआ तब ब्रह्मा जी प्रकट हुआ, तब आशीर्वाद मांगा। और कुंभकर्ण ने जब आशीर्वाद मांगा उस वक्त सरस्वती को बुला के ब्रह्मा जी ने कहा कि कुंभकर्ण की जबान के ऊपर जाके बैठ जाओ, ये ऐसे ही चलते हुए हजारों लोग मार रहा है। तब बोले, क्या बोला कुंभकर्ण ने? सोया रहो, तथास्तु, सोए रहो। तो ब्रह्मा का वर्णन है वो। जो भी है, मेरे कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा को जानने वाला रावण भी राम को नहीं जान पाया। मतलब इतने देवताओं के पुजारी असुर ज्यादा होते हैं। क्यों देवता के पुजारी असुर क्यों होता है? क्योंकि देवताओं से भोग मांगता है और भोगता भगवान है। जो दूसरा कोई भोगता बनता है इसका मतलब भगवान का कॉम्पिटेटर है, इसलिए वो असुरी प्रवृत्ति का हो गया। अगर देवता से भगवान की भक्ति मांगता है तो भक्त है, और देवता से भोग मांगता है तो असुर है। क्योंकि वो तो कंप्यूटर है भगवान का। ये डिफरेंट, ये समझना मुश्किल है, लेकिन जरासंध आदि सब जो है वो शंकर के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन कृष्ण से द्वेष करते थे। तो इतनी आसानी से ये सब बातें सरलता से भक्ति में समझ जाना और कृष्ण को भगवान मानना, ये सबके लिए संभव नहीं है। यहां तक भी प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मा आदि देवता भी ये समझना उनके लिए मुश्किल है। यत मोयंती सूर्य है, देवता भी श्री कृष्ण जब यहां लीला कर रहा था तो इंद्र उसको पहचान नहीं पाया, बरसात किया तो भगवान ने गोवर्धन उठाया, ब्रह्मा जी बछड़े चुरा के गए वो भी पहचान नहीं पाए, यशोदा नंदन कृष्ण को पहचानना देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। क्यों भाई, वरुण देव ने भेजा है क्या? वरुण देव ने भेजा होगा लगता है ना, कि पानी चाहिए पानी चाहिए। हरे कृष्णा, पानी चाहिए, लाओ पानी, लाओ पानी, लाओ पानी, लाओ। वरुण देव का बेटा है हा? ऐसे तो अच्छा है कि हाथ में उठा ऊपर डालता तो क्या करता। तो फिर भी कह रहा है कि लाऊं डालूं डालूं नहीं बोल रहा है। हरे कृष्णा, भगवान ने यह शब्द लिखा है कि यशोदा नंदन कृष्ण समझना देवताओं के लिए भी, ब्रह्म परमात्मा साक्षात्कार किए हुए योगियों के लिए भी बहुत दुर्लभ और मुश्किल है। मोहयंती यत सूर्य, देवता भी मोहयंती मतलब मोहित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं भगवान। आठ देवताओं का भगवान ने अपनी वृंदावन लीलाओं में क्या किया, वृंदावन अथवा द्वारका लीला में मान मर्दन किया आठ मुख्य देवताओं का। और फिर क्या लिखा है, नहीं वो मेरे से नाराज हो जाएंगे। कहीं लिखा है आठ मेहनत, देखा अभी आप ढूंढना, इतना आप भी मेहनत करना भाई। हरे कृष्णा, माम तो वेदना कष्ट, मेरे को वो नहीं जान सकते हैं। तो कौन जानता है, महात्मा सु दुर्लभ। तो भगवान को जानने के लिए महात्मा कौन है, देवी में प्रकृति महाश्रता राधा रानी की कृपा से कोई भगवान श्री कृष्ण को जान सकता है। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र में हरे राधा रानी को रोज की प्रार्थना है। कृष्ण को कोई जानता है तो केवल राधा रानी जानता है, जानती है, और उसकी कृपा से, जो उसके भक्त हैं उनकी कृपा से कोई कृष्ण को जान सकता है। कृष्ण को जानना राधा रानी के भक्तों की कृपा से होगा। इसलिए गुरु को कहते हैं राधा रानी की कृपा और बलराम जी की आध्यात्मिक शक्ति का प्रतिनिधि है। दोनों के कृपा के द्वारा गुरु शिष्य को कृष्ण का दर्शन करा सकता है, दर्शन का मतलब पहचान करा सकता है। अब इसका अर्थ सीधा ये निकालिए, जो राधा को और बलराम को न मानते हैं न जानते हैं, वो गुरु कृष्ण को कैसे दिखा सकते हैं या समझा सकते हैं। इसका अर्थ ये निकालना चाहिए, जो राधा के विषय में जिनको जानकारी नहीं है, यहां तक हमने सुना और देखा है कि राधा स्त्री रूप है, इसका दर्शन करने से हमारा संन्यास भंग हो जाएगा, तो वो कृष्ण का दर्शन कहां करा सकेंगे। बलराम जी और कृष्ण का जो उनके अस्तित्व को नहीं जानता है अथवा उनकी कृपा का जिसको अनुभव नहीं है, वो कृष्ण को नहीं जान सकता। अब कहीं कोई साधु संत महात्मा मिले आपको, पूछो कि राधा रानी क्या कौन है, बलराम जी कौन है, और कहते हैं तो इसको क्या करेंगे, मैं बैठा हूं ना, तो समझ लो कि ये आपको भगवान तक नहीं पहुंचा सकता। वैसे भी बाप को बताने के लिए माँ चाहिए और राधा को जगत की माता कहा गया है। माँ ही बता सकती है कि भगवान कौन है, कृष्ण कौन है, जगत पिता कौन है। महात्मा तो दुर्लभ है। कौन सा महात्मा दुर्लभ है? जो देवी प्रकृति के आश्रित है वो महात्मा है। उसकी पहचान क्या है? सततम कीर्तन अयंतो माम, वो सदा मेरे कीर्तन में लगा हुआ होता है। कीर्तन का मतलब मेरी महिमा गाता है, मेरी कथा करता है, मेरा कीर्तन करता है, उसको और कोई काम नहीं है। तो फिर कैसे जान सकते हैं कृष्ण को? वो ये पद्म पुराण का श्लोक प्रभुपद ने लिख के ये भावार्थ पूरा किया है। अत श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्रहायम इंद्रियः। इसका अर्थ है अत इसलिए श्री कृष्ण के नाम आदि, नाम गुण रूप आदि। नाम का मतलब हरे कृष्णा मंत्र, गुण का मतलब भगवान भक्त वत्सल है और जप करने वाले को ध्यान से देखता रहता है और देखता है कि कहीं इसको कहीं से कोई संकट ना आ जाए। जैसे जप करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी को धूप में बैठे हुए को राधा रानी ऊपर से आंचल से छाया कर रही थी, शेर पानी पीते हुए शेर से रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बीच में खड़े थे, ये इसका अर्थ है। उसका 28 को है ना, कल तो बहुत बहुत संतों के कतिरोभाव तिथि का दिन है, तो ये इसका अर्थ इसका ये है। अगर कीर्तन करेंगे तो भगवान रक्षा करेंगे, भगवान को पाने के लिए कीर्तन करेंगे। तो इंद्रियों से भगवान को या भगवान के नाम या गुण लीला को नहीं जाना जा सकता है, इंद्रियों से नहीं। हाँ, न ग्रहायत, ग्रहण नहीं किया जा सकता है इंद्रिय, इंद्रियों से नहीं किया जा। फिर कैसे होगा? स्वयं स्वयमो मुखे सेवानो मुखे ही जीव आदौ स्वयं एव स्प्रत्ये अदः। स्वयं अपनी कृपा से वो प्रकट हो जाता है, इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन वो अपने आप प्रकट होता। कब? जब उसकी सेवा करना शुरू करेंगे। कहां से सेवा करेंगे? बोला जिभा, जबान से। जबान से भगवान की सेवा शुरू करेंगे तो इंद्रियों से न जानने वाला भी इस विशेष इंद्रिय के द्वारा जाना जा सकता है। तो इस इंद्रिय से क्या सेवा करनी चाहिए? प्रसाद खाना चाहिए, वो तो आपने खा लिया। अब दूसरी इंद्रिय से सेवा करना चाहिए, भगवान का नाम जपना, वो जप लीजिए और आज की कथा को यहाँ समाप्त कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है? एक घंटा पूरा, 3 सेकंड ऊपर है 1 घंटे से। किसी का कोई प्रश्न है?